प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट 2024-25 से पूर्व आज नई दिल्ली में नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की और उनकी राय और सुझाव लिए। हरियाणा में मुनक नहर की दीवार टूटने से बवाना इलाके में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली सरकार ने वाहनों की प्रदूषण जांच की दरों में वृद्धि की घोषणा की। संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में थाईलैंड पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट 2024-25 से पूर्व आज नई दिल्ली में नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की और उनकी राय और सुझाव लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा और कई जाने माने अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ बैठक में उपस्थित थे। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करेंगी। नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि इस बार का बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। लोकसभा चुनाव की वजह से इस वर्ष फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज कहा कि भारत के लिए बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, बिम्स्टेक, उसके पड़ोसी पहले, एक्ट ईस्ट नीति और सागर योजना के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों के दूसरे सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डॉ जयशंकर ने कहा कि बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का संदेश इस मायने में स्पष्ट होना चाहिए कि वे सभी बंगाल की खाड़ी क्षेत्रों के देशों के बीच नई ऊर्जा और नए संसाधनों के साथ सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा 2024 मामले की सुनवाई इस महीने की 18 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पार्टियों को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामों पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए स्थगन दिया। शीर्ष अदालत में आज विवादास्पद नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। इनमें 5 मई की परीक्षा के दौरान अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाएं शामिल हैं। नीट यूजी परीक्षा को लेकर आज छात्रों के एक समूह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से नई दिल्ली में मुलाकात की। छात्रों ने परीक्षा और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में अपने अनुभव साझा किये। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 2014 से 2023 के बीच 10 वर्षों के दौरान देश में 12.5 करोड़ रोजगार मिला। इसे दुनिया में भारत सबसे ज्यादा नौकरियों के अवसर सृजित करने वाले शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। आज नई दिल्ली में पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के शासन में केवल 2.9 करोड़ रोजगार के अवसर बने थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ एक स्थिर सरकार है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर लोगों से किए गए वायदों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने सभी तथ्यों के साथ आरोप पत्र दायर किया है और आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं के संबंध में अदालत को सबूत दिए हैं।
आज दिल्ली का हर निवासी उससे त्रस्त, कई तरह के बड़े बड़े वादे किए, दिल्ली को साफ करेंगे, कचरे का ढेर बंद कर देंगे, हटा देंगे, कोई भी वादे पे खरे नहीं उतरे। दिल्ली वासियों को पानी की व्यवस्था कर नहीं पाए, शराब के ऊपर उनका फोकस रहा हमेशा। केजरीवाल जी ने शराब घोटाले में जो काम किया, आज उसके कारण संपूर्ण राजनीतिक जीवन पर, उनके विचार पर, उनकी सोच पर एक बड़ा प्रश्न मार्क लगा।
भाजपा ने दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। नई दिल्ली में पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि लोग श्री केजरीवाल से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की उम्मीद कर रहे हैं।
इस पूरे घटना में अरविंद केजरीवाल ही किंग पिन, यानी इस पूरे घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल लगते हैं और अब तो आरोपित हो चुके हैं। अब जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें वो 37 नंबर के आरोपी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, माननीय न्यायाधीश ने कहा है कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत आ गए हैं, जिसके आधार पे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आगे की कार्रवाई होनी चाहिए।
उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा है कि दिल्ली सरकार लोगों के हितों के लिए काम कर रही है, लेकिन भाजपा सरकार को कामों को रोकने का प्रयास कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में यही है कि कैसे भी करके इनके गवर्नेंस को रोक दो, इनके नेताओं को प्रताड़ित करो और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखो। बस ये तीन पॉइंट है। तो एक तरफ ये दिल्ली में गवर्नेंस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम होने नहीं दे रहे हैं। वो जब फेल हुआ तो फिर ये हमारे लीडर को जेल में रखे हैं, और तीसरी तरफ ये बाकी के जो लीडर्स हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। हरियाणा से दिल्ली को पानी की आपूर्ति करने वाली मुनक नहर की कल देर रात दीवार टूटने से बवाना क्षेत्र की जेजे कॉलोनी में पानी भर गया, जिसके बाद इलाके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल सहित हरियाणा और दिल्ली सरकार के कई विभाग दीवार को ठीक करने और इलाके से पानी की निकासी में जुटे हुए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लोगों की सुविधा के लिए पानी के टैंकर और मोबाइल शौचालय तैनात किए गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बवाना क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और हरियाणा सरकार मिलकर काम कर रही हैं।
दिल्ली में हरियाणा से पानी मुनक कनाल लेके आती है, उसकी एक सब ब्रांच करियर लाइन चैनल में जो एम्बैंकमेंट वॉल है वो ब्रीच हुई है, यानी टूटी है। उसकी वजह से जो मुनक कनाल में पानी आता है वो पानी बहकर बवाना जेजे कॉलोनी के कई एरियाज में चला गया है। हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट की टीम कल रात से ही यहाँ पर साइट पर मौजूद है, उनके साथ दिल्ली जल बोर्ड की भी टीम यहाँ पर साइट पर मौजूद है। तो हमें उम्मीद है कि कल दोपहर तक हरियाणा से फिर से पानी की सप्लाई हमारे CLC चैनल में आ सकती है।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुनक नहर की दीवार टूटने और बवाना में पानी भरने पर चिंता व्यक्त की है। श्री सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार और बाढ़ नियंत्रण विभाग मंत्री को हरियाणा सरकार के साथ समन्वय बनाने और नहर को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल ने राजधानी में पानी की आपूर्ति को भी जल्द से जल्द सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र में मेडिकल टीम भेजने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है। दिल्ली में बाढ़ की तैयारियों को लेकर आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल सहित दिल्ली सरकार के कई विभाग उपस्थित थे। बैठक में शहर के प्रमुख नालों की सफाई व्यवस्था और बाढ़ की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा कि बाढ़ की स्थिति किसी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह सतर्क और तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि तेज बारिश के कारण यमुना के जलस्तर में वृद्धि होने से बाढ़ आती है तो भी सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति के दौरान शहर के लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने वाहनों की प्रदूषण जांच की दरों में वृद्धि की घोषणा की है। नई दरों के अनुसार पेट्रोल, CNG और LPG से चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए संशोधित दर 80 रूपये है। चार पहिया और उससे ऊपर के वाहनों के लिए नई दर 110 रूपये है। डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए 140 रूपये है। हालांकि नई दरें सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद ही लागू होंगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से नई दरों के लिए काफी लंबे समय से मांग थी, जिसके मद्देनजर दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के गांव भरथल और बामनोली में बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इन कार्यों में गांवों में सड़कें, घर और बरसात के पानी की सुचारू निकासी, नाले और नालियों के जीर्णोद्वार, पार्क, फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट की मरम्मत जैसी सुविधा शामिल है। श्री बिधूड़ी ने बताया कि गांव के विकास कार्यों के लिए 30 करोड़ रूपये लागत की योजनाएं बनाई गई हैं। दिल्ली नगर निगम शाहदरा क्षेत्र के एक पार्क में कैक्टस गार्डन बना रहा है। ये बगीचा निगम का पहला और दिल्ली का दूसरा कैक्टस गार्डन होगा। इस बगीचे का निर्माण केंद्र सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए से अधिक लागत से किया जा रहा है। निगम ने बताया है कि लगभग 1.5 एकड़ के क्षेत्रफल बन रहे इस बगीचे में कैक्टस की 15 किस्में लगाई जा रही हैं। दिल्ली में विभिन्न पार्क और गार्डन विकसित किए जा रहे हैं, जिससे शहर में हर एक क्षेत्र बढ़ेगा। बगीचे का निर्माण सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रोफेसर मोहम्मद शकील को जामिया मिलिया इस्लामिया का कार्यवाहक कुलपति बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दों पर वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम का विषय था मां और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए गर्भधारण का उचित समय और अंतराल। श्री नड्डा ने कहा कि कम प्रजनन दर का लक्ष्य हासिल कर चुके राज्यों में इसे बनाए रखने और अन्य राज्यों में इसे हासिल करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है।
हमारे देश की पॉपुलेशन दुनिया की 1/5 है, इसलिए भारत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और उसमें भी 65% हमारी जो लोग है वो एडोलेसेंट है। अब नाउ दिस कैन बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो where the young population can be sensitized so that in coming times we are able to contain the population and we can strengthen our family planning.
संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। थाईलैंड भारत इंटरवोवेन लेगेसीज स्ट्रीम ऑफ फेथ इन बुद्धिज्म के नामक ये प्रदर्शनी भारत और थाईलैंड के बीच एक सहयोग है, जिसमें भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि देने वाली तस्वीरें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत और थाईलैंड ने लंबे समय से ऐसे कार्यक्रमों की मेजबानी की है जिन्होंने उनके सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया है। प्रदर्शनी का समापन 4 अगस्त को होगा। मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य परिसर में एक नए फाइलिंग काउंटर तथा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। नया केंद्र न्यायालय में कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए वकीलों को उनके मामलों से संबंधित सभी दस्तावेजों के केंद्रीकृत रिकॉर्ड प्रदान करेगा।
The idea of this multi-facilitation center is right at the entry point to the Supreme Court. All litigants, all lawyers coming to the court must have a single point where they can file cases, obtain information about cases, and yet do it in a very comfortable environment consistent with our weather patterns. So I hope this facility will enhance the quality of service which the Supreme Court renders to all the citizens of the country.
दिल्ली पुलिस के नारकोटिक्स दस्ते ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को राजधानी के महरौली क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से उच्च गुणवत्ता का 2 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2024-25 से पूर्व आज नई दिल्ली में नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की और उनकी राय और सुझाव लिए। हरियाणा में मुनक नहर की दीवार टूटने से बवाना इलाके में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली सरकार ने वाहनों की प्रदूषण जांच की दरों में वृद्धि की घोषणा की। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में थाईलैंड पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।